दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्दिवो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्यैकसाराय नमः शान्ताय तेजसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाङ्ग्रमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् जय राम जय जय राम
जय राम जय
श्री राम जय जय राम
जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
जय रघुनंदन जय घनश्याम
जय रघुनंदन जय घनश्याम
मुरली मनोहर राधे श्याम
मुरली मनोहर राधे श्याम
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम।
भारतीय संस्कृति में प्रस्थानत्रयी शब्द प्रचलित है। प्रस्थानत्रयी का अर्थ ये होता है कि बड़े बड़े महात्मा लोगों ने ऋषि लोगों ने परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए जो साधना का अनुष्ठान किया अथवा परमात्मा का साक्षात्कार करके परम शांति की प्राप्ति की तो उस साधना के संदर्भ में उस साधना की पूर्णाहुति के बाद उन्होंने जो ज्ञान मनुष्य जाति के कल्याण के लिए रखा परमात्मा की ओर जो उन्होंने प्रस्थान किया तो उस साधना का जो परिचय ग्रंथों के अंतर्गत मिला उन ग्रंथों को प्रस्थानत्रयी का नाम दिया गया। प्रस्थानत्रयी में सबसे पहले समावेश होता है ब्रह्म सूत्र का, महर्षि व्यास की जो रचना है, और उसके बाद उपनिषदों का समावेश होता है, और फिर प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता का समावेश होता है। भारतवर्ष में एक जमाना ऐसा भी था जब इन तीनों ग्रंथों के अंदर जो निपुणता प्राप्त करते थे या अपने विचारों का प्रकाशन तीनों ग्रंथों के संबंध में करते थे उनको आचार्य नाम दिया जाता था, आचार्य की संज्ञा उसे प्रदान की जाती थी। तो तीनों ग्रंथों में भी श्रीमद् भगवद गीता जो है वो तीनों ग्रंथों में निचोड़ स्वरूप है, निष्कर्ष एक प्रकार से। यदि हम कहें कि भारतीय संस्कृति को संक्षिप्त रूप में श्रीमद् भगवद गीता में रखी गई, भारतीय तत्व ज्ञान को या धर्म को संक्षिप्त रूप में श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत रखा गया है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होती। फिलोसॉफी इन अ नट शेल, बहुत संक्षेप में जो भी हमारे भारतीय संस्कृति के सिद्धांत और आदर्श है उन आदर्शों को अथवा सिद्धांतों को श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत रखे। 18 अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के, कुल मिलाकर के 700 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के हैं। और गीता के संदर्भ में संबंध में ये भी कहा गया है कि ये जो श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ है उसको यदि सुचारू रूप से समझ लिया जाए, समझ करके यदि उसको जीवन में उतारने की कोशिश की जाए तो और किसी ग्रंथ को समझने की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य समझे तो भी ठीक है, नहीं समझे तो भी ठीक है, गीता समस्त धर्म ग्रंथों का निचोड़ होने से उसको यदि अच्छी तरह अस्तामलकवत किया जा सकता है, जीवन में उतारा जा सकता है, तो मनुष्य को शांति की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। इसलिए गीता के महात्म्य में कहा गया है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य ही शास्त्र विस्तर ही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिष्कृता। जो भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से जो स्वयं गीता का संदेश निकला हुआ है उस गीता ग्रंथ को अच्छी तरह से यदि कोई समझता है और समझ करके बैठा नहीं रहता, परंतु महात्मकार कहते हैं सुगीता कर्तव्या, उसको कर्तव्य में उतारना है, जीवन में उतारने के लिए उन सिद्धांतों का अनुवाद करने के लिए जितना भी हो सकता है उतना कोशिश करना है। यदि गीता को कर्तव्य में उतारने की मनुष्य आसानी से प्रामाणिकता से ईमानदारी से कोशिश करता है तो फिर किमन्य ही शास्त्र विस्तर ही, फिर दूसरे शास्त्र ग्रंथों की क्या आवश्यकता। तो गीता की महिमा ऐसी सुंदर रूप से गाई गई है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको नामः तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। तो एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, उसके संबंध में ये भी महात्मकार ने कहा कि धर्मशास्त्र तो एक ही है जो सुचारू रूप से समझना चाहिए, और वो धर्मशास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता, जो कि देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपने श्री मुख से गाया, जिसका उपदेश कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अर्जुन को प्रदान किया। उससे बढ़कर कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है। ये महात्मकार जो महर्षि व्यास है उनका अपना अभिप्राय है। गीता के विषय में ये भी कहा गया कि जितने भी उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, श्वेताश्वतर और तैतिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ये जो 10 क्लासिकल उपनिषद माने जाते हैं, जो संस्कृत एंटायर संस्कृत लेकर के एमए करते हैं भारतवर्ष के अंदर, उसको ये 10 उपनिषदों का अध्ययन करना पड़ता है। तो ये जो 10 महत्व के उपनिषद माने गए हैं ज्ञान की दृष्टि से, उन उपनिषदों को यहाँ पर गीता के महात्म के श्लोक में गौओं के साथ सरखाए गए हैं कि जितने भी उपनिषद हैं सब गौ हैं, और भगवान श्री कृष्ण चंद्र है, गोपाल है और वत्स है अर्जुन, और गीता रूपी दूध जो है अमृत सदृश है। वो अमृत सदृश जो दूध है वो मनुष्य जाति के मंगल के लिए भगवान श्री कृष्ण रूपी गोपाल ने निकाला हुआ है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। ये जो सुधी ही है, जो विद्वान लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, अपने जीवन का मंगल करने के लिए जिनके अंदर इच्छा है, ऐसे जो लोग हैं आत्म कल्याण के इच्छुक, वैसे जो लोग हैं वो भोक्ता बनते हैं, ये अमृत का पान करते हैं। तो गीता के विषय में इतनी सुंदर शब्दावली में उसके महात्म्य को रखा गया है, तो हम समझना चाहेंगे कि गीता में ऐसी कौन सी बातें हैं। बहुत सी बातें, 18 अध्याय गीता के ऐसे तो है, और यदि हम कम से कम 18 दिन लगाएं गीता के पीछे, एक एक अध्याय के प्रति एक दिन हम दें, तो भी गीता की महिमा को सुचारू रूप से नहीं समझ पाते। लेकिन जैसे हम सरिता के समीप जाते हैं, गंगा के पास पहुंचते हैं, तो सारी गंगा को घर में उठा करके लाते नहीं, हमारा जो छोटा या बड़ा पात्र होता है उसके मुताबिक उसमें जितना जल का समावेश होता है उतना जल लेकर के घर आते हैं, आचमन कर लेते हैं गंगा का, स्नान कर लेते हैं, पान कर लेते हैं, भोजन बना लेते हैं गंगा के जल से, और संतोष मान लेते हैं कि हमने गंगा का लाभ उठाया है। उसी प्रकार से श्रीमद् भगवत रूपी गीता रूपी जो गंगा है, महान गंगा है, उस गंगा के पास जा करके भी यदि हम थोड़ा सा आचमन ही कर लें, थोड़ा सा स्नान कर लें, थोड़ा सा पान कर लें, किसी एक श्लोक का ही, किसी दो श्लोकों का ही, तो भी हमें संतृप्ति हो जाती है, संतोष हो जाता है, तसल्ली हो जाती है, और जीवन में हमारे लिए जो आवश्यक है उस सामग्री की प्राप्ति भी हो सकती है। इसलिए मैं केवल एक श्लोक के पर अपने विचारों को प्रकट करता हूं। ऐसे गीता में बहुत से मंत्र है, जीवनोपयोगी मंत्र, जिनको मंत्र कहे जाते हैं, जिनका आधार लेने से जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं, सुख शांति पा सकते हैं, तर जाते हैं अविद्या रूपी अंधकार में से मुक्त हो सकते हैं, वैसे मंत्र है जिनके पर मनन करने से मनुष्य तर सकता है, त्रिताप को तर सकता है, वही है मंत्र। ऐसे बहुत से श्लोक जिनको श्लोक कहने की अपेक्षा मंत्र कहना अधिक सुचुरीकर होगा, अधिक अच्छा होगा, ऐसे मंत्र है। और वैसे मंत्रों में से एक मंत्र मैं आपके आगे आज प्रस्तुत रखता हूं, जिससे कि हमारे पास जो भी समय है उस समय के अंतर्गत हम उस मंत्र का विचार कर सके। बड़ा सुंदर मंत्र भगवान ने रखा है गीता में, बहुत सुंदर। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्पर बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम् भव। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। ये जो दूसरा श्लोक है पीछे का, वो मंत्र है एक प्रकार से। बहुत से मंत्र है गीता में, उनमें से एक महामंत्र है, और उसमें भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अर्जुन से कहा, अर्जुन को निमित्त बना करके समस्त मनुष्य जाति से कहा, जो भी अपने आत्म कल्याण के अभिलाषी है सबको संदेश भगवान ने प्रदान किया है। तो मनुष्य सुख को तो चाहता ही, कोई आदमी ऐसा नहीं संसार में जो दुख को चाहता, सुख के लिए कोशिश भी करता है, दुख आ जाता है अलग बात है, लेकिन कोई दुख को आमंत्रण नहीं देता, दुख के लिए कोई चिट्ठी नहीं डालता कि हमारे जीवन में दुख आ जाए, हमारे घर में अशांति छा जाए, कोई नहीं चाहता। अशांति आ जाती है, दुख आ जाता है, लेकिन दुख को दूर करने के लिए और हमेशा के लिए सुख शांति में स्नान करने के लिए मनुष्य इच्छा रखता है। क्या करना चाहिए जिससे कि जीवन में सुख शांति छा जाए? आज पश्चिम की दुनिया विज्ञान के पीछे पड़ी हुई, प्राकृतिक संशोधन जिसे हम कहते हैं, आउटर स्पेस के इन्वेस्टिगेशंस बहुत चलते। अभी हम लोग वाशिंगटन गए थे 3 दिन पहले, वहां पर हमने म्यूजियम को देखा, आदमी चंद्र में गया, आदमी मंगल में गया, तो देखे सारे वो चीजें जो कि मंगल और चंद्र में जाने के लिए तैयार की गई थी, और वहां से जो चीजों को लाया आदमी वे भी वहां पर रखे थे, लेकिन इससे भी मनुष्य को शांति मिली नहीं। आउटर स्पेस का अन्वेषण है ये, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द आउटर स्पेस, बाह्य जगत का, बाह्य जो अवकाश है उसका शोषण मनुष्य करता है। प्रकृति का अन्वेषण, हजारों लाखों वैज्ञानिक इसके अंदर पड़े हुए हैं, तो कर रहे हैं, उसके कुछ फायदे भी होते हैं, अपनी अपनी दृष्टि से सभी चीजों के लाभ तो होते ही है। ये चल रहा है संसार के अंदर, घरों में रंगीन टेलीविजन आ गए हैं, कारें आ गई है, सब कुछ आ गया है, फर्नीचर बढ़िया खूब सुंदर घरों में आ गया है, और फिर भी हम देखते हैं मनुष्यों के जीवन के अंदर शांति आ गई है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। समृद्धि एक बात है, शांति अलग ही चीज है। कहीं समृद्धि होती है शांति नहीं होती, कहीं समृद्धि होती है शांति होती भी है, और कहीं समृद्धि नहीं होती वहां पर भी शांति हो जाती है। तो जीवन को सुसमृद्ध बनाना, प्रास्परस बनाना एक बात है, और जीवन को पीसफुल बनाना, शांति से संपन्न करना अलग बात है। आप एक रोटी खा करके भी शांत हो सकते हैं, और आपके पास पकवान का थाल हो फिर भी आप अशांत बन सकते हैं। आपके पास बहुत बड़ा बंगला हो, अपार्टमेंट ही नहीं, आपकी अपनी स्वतंत्र मिलकत हो, बहुत बड़ा बंगला हो, फिर भी आप दुखी हो सकते हो, आप निंद भी नहीं ले सकते, सो भी नहीं सकेंगे, करवट बदलते ही रहेंगे, फिर भी आप शांति से सो नहीं सकेंगे। और आपके पास एक झोपड़ी हो, शायद आप फुटपाथ पर रास्ते के किनारे सोए हुए हो, और फिर भी आप शांति से चैन से नींद ले सकते हैं, खुर्राटे बोलते होंगे आपके, आप जीवन का संतोष है उसका अनुभव कर रहे होंगे। तो शांति कोई अलग ही चीज है, सुख कोई अलग ही चीज है, और जो प्रॉस्पेरिटी हम कहते हैं मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, भौतिक समृद्धि, वो कोई और ही चीज है। इसलिए हमारे जगत में बहुत बड़े वैज्ञानिक मॉडर्न वर्ल्ड में अभी हो गए पश्चिम की दुनिया में, और उनका नाम था आइंस्टीन। आइंस्टाइन जो थे उन्होंने लिखा कि हम लोग आउटर स्पेस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन इनर स्पेस का इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। जब तक हम इनर स्पेस का इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, हमारे अंदर क्या है, ये जो हमारा प्लेनेट है पंचमहाभूत का, ये जो मनुष्य शरीर है जिसको देव दुर्लभ माना गया है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर चेतना है कि नहीं, उसके अंदर दी लाइफ है कि नहीं, है तो किस प्रकार का है, उसको कैसे पहचाना जा सकता है। जब तक हम इसके पीछे नहीं चलेंगे, और हमारे मन के पर, हमारे इंद्रियों के पर जब तक हम संयम नहीं स्थापित करेंगे, तब तक हम समृद्धि से संपन्न बन सकेंगे, लेकिन शांति से संपन्न नहीं हो सकेंगे। ये प्रोफेसर आइंस्टाइन ने लिखा, एक जगह पर कहा, गीता यही बात कहती। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को निमित्त बना करके समस्त मनुष्य जाति को ये संदेश सुनाते कि आप यदि तरना चाहते, दुख को तरना चाहते, कष्ट को तरना चाहते, त्रिताप को तरना चाहते, तो तरना चाहते हैं तो आपको मैं रास्ता बताना, और यदि आप डूबना चाहते, नष्ट हो जाना चाहते, विनाश चाहते, टोटल एनिहिलेशन, सार्वत्रिक सर्वनाश यदि आप चाहते, तो उसके लिए भी रास्ता है। ये जो महामंत्र गीता में बताया गया उसमें दोनों प्रकार के रास्ते बताए गए। मच्चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि, तरिष्यसि वहां पर आया, तर जाओगे, और दूसरी पंक्ति में कहा यदि चेत अहंकारान न श्रोष्यसि तो विनंशसि, तो विनाश हो जाओ, विनष्ट हो जाओगे, नाश तुम्हारा हो जाएगा। दोनों प्रकार की बातें आई। अब मनुष्य को जिस मार्ग पर चलना हो, उस मार्ग पर चलने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है, भगवान ने उसको बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की है। अब मनुष्य जिस प्रकार से भी अपनी मोटर को चला ले, चला सकता है, न्यूयॉर्क भी जा सकता और दिशा में भी जा सकता, पतन की दिशा में भी जा सकता, उन्नति की दिशा में भी जा सकता, जिस प्रकार से वो जाना चाहे उस प्रकार से चला जा सकता है। तो भगवान कहते हैं यदि तरना चाहते, यदि शांति चाहते हो, यदि सुख चाहते हो, यदि सफलता की इच्छा रखते हो, जीवन में सार्थक बनना चाहते हो, जीवन में संतोष का अनुभव करना चाहते हो, तो आपके लिए रास्ता है। भगवान कहते मच्चित्त, ये रास्ता भगवान ने बताया, एक ही शब्द में बता दिया। ये महामंत्र भगवान ने बताया गीता में कि चित्त के पर सब कुछ आधारित है। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में महर्षि कपिल ने अपनी माता देवहूति से कहा, माता ये मन है वो शांति अशांति का, सुख दुख का कारण। मन किसी से राग करता, किसी से द्वेष करता, किसी को अपना समझता, किसी को पराया समझता। मन को सुधारना है, मन को उदात्त बनाना है, मन को प्रभुमय कर देना है, मन को भक्ति से ज्ञान से संपन्न बना देना है। ये मन यदि भगवान की ओर चला जाएगा तो सुख प्रदान करेगा। ये मन यदि प्राकृतिक विषयों की ओर चला जाएगा, प्रकृति के विषय में चला जाएगा, संसार के क्षण भंगुर पदार्थों के पीछे चला जाएगा तो दुखी बन जाएगा और दुखी करेगा। भगवान कहते हैं यदि तुम सुखी बनना चाहते हो, सर्व दुर्गाणी, सर्व प्रकार के जो कष्ट है, सर्व प्रकार जी की जो आदि व्याधि उपाधियां है, उनसे यदि तरना चाहते हो, यदि छूटना चाहते हो तो आओ मच्चित्त, चित्त को मेरे में लगा दो, चित्त को मेरे से जोड़ दो। चित्त का जो अनुसंधान है इस समय, जो संसार के विषयों के साथ है, उसकी अपेक्षा चित्त का अनुसंधान मेरे साथ लगा दो, परमात्मा के साथ लगा दो, और फिर देखो शांति मिलती है या नहीं मिलती, आनंद मिलता है या नहीं मिलता। जिन्होंने भी अपने चित्त को नाम जप के साथ, कीर्तन के साथ, ध्यान के साथ, परमात्मा की प्रार्थना के साथ, सुमिरन के द्वारा, शरण के द्वारा भगवान में जोड़ दिया है, उन्होंने शांति का अनुभव किया है, उनको संतोष मिला है। और जिन्होंने भगवान को छोड़ दिया है, अहंकार से उन्मत्त जो बन गया है, ममता और आसक्ति का शिकार हो गया है, राग द्वेष के परपोटी जिनके मन के अंदर नित्य निरंतर फूटते ही रहते, उनको कभी भी सुख की प्राप्ति संसार में नहीं हुई है, भगवान ये कहना चाहते। इसलिए कहते हैं मच्चित्त, चित्त को मेरे में लगा दो। अब ये जड़ चीज है, ये माइक है, जड़ है। लेकिन देखिए इसके अंदर शक्ति कैसी आ गई है। शक्ति माइक में नहीं है केवल, शक्ति ये वायर में भी नहीं है, वायर भी तो जड़ है। तो शक्ति कैसे आ गई है उसके अंदर, जो करंट है ना, इलेक्ट्रिसिटी का करंट। यदि इलेक्ट्रिसिटी का करंट न हो वायर में तो ये माइक निकम्मा हो जाता है, कुछ काम नहीं कर सकता है। तो ये जो करंट है वो वायर के द्वारा उसको माध्यम बना करके यहां तक पहुंच गया है, माइक तक आ गया है। इसलिए हम लोग जो बोलेंगे उसका प्रतिघोष होगा, उसका प्रतिघोष पड़ता है। इसी प्रकार मन तो जड़ है, लेकिन यदि मन का संबंध ये चैतन्य शक्ति के साथ, परमात्मा के साथ किया जा सकता है, ध्यान के द्वारा, जप के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, तो मन के अंदर अनंत शक्ति आ जाती, जीवन अनंत शक्ति से संपन्न हो जाता और सर्वशक्तिमान परमात्मा का अनुसंधान साधता है। छोटा मन बहुत बड़ा काम कर देता, मनुष्य को शांति देता, क्यों कि उसका संबंध भगवान से है। भगवान कहते चित्त का संबंध मेरे से करो, मेरे में चित्त को लगा। शरीर कहीं पर भी रहता है, शरीर किसी प्रकार का भी काम करता है, लेकिन मन को आप वहां रह करके भी मेरे में लगा सकते हो, मेरे से जोड़ सकते हो, तो आप सुखी बन जाओगे, तो आप शांति से संपन्न हो जाओगी। बड़ा सुंदर भगवान ने कहा गीता में। रामायण के अंदर एक छोटी सी बात आई है, हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के आदेश के अनुसार लंका में पहुंचते, लंका में पहुंच करके माता सीता से मिलते, माता सीता से मिलकर के वहां पर श्री राम का संदेश हनुमान जी माता सीता को सुनाते हैं। माता सीता को सुनाने के पश्चात हनुमान जी वहां से जाते हैं, फिर लंका दहन होता है। लंका दहन जब हो जाता है फिर माता सीता को मिलने के लिए हनुमान जी आते हैं, जाने के पहले, लंका की विदा लेने के पहले। तो माता सीता प्रसन्न हो जाती है सब कुछ समाचार जान करके, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न पैदा हो जाता है। माता सीता हनुमान से पूछती, हनुमान जी तुमने इतना असाधारण पराक्रम कर दिखाया, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मुझे संदेह होता है। रावण बहुत बलवान है, उसकी जो सेना है उसकी गिनती नहीं हो सकती, असंख्य सैनिक उनकी सेना में, और बड़े बड़े राक्षस है, पराक्रमी राक्षस है, तुम उनका मुकाबला कैसे कर सको? राम उनका मुकाबला कैसे कर सकेंगे? राम कैसे विजयी हो सकेंगे? तुम लोग कैसे विजयी हो सकोगे? रावण के साथ जो संग्राम होगा उसके अंदर तुम्हारी पराजय हो जाएगी। तो हनुमान जी ने कहा, माता हम लोग जैसे बाहर से दिखते हैं वैसे सचमुच नहीं है, बाहर से हम छोटे दिखते हैं, बाहर से हम छोटे कपी साधारण दिखते हैं, बटू दिखते हैं, लेकिन भीतर से हम छोटे नहीं है, हमारे पीछे जो शक्ति है वो शक्ति बहुत बड़ी है, और वो शक्ति श्री राम की, भगवान की है। हमारे सिर पर श्री राम का वरद हस्त है, श्री राम का भय हस्त है, इसलिए हम निर्भय है, इसलिए हम निश्चिंत है। हम कहीं पर भी चले जाते हैं, ये समुद्र को लांग करके जो मैं आया मेरी शक्ति से आया हूँ, मेरी शक्ति से नहीं आया, श्री राम की शक्ति से आया हूँ। ये तुम्हारे पास जो मैं पहुंच गया श्री राम की शक्ति से पहुंचा हूँ, और फिर भी समुद्र को लांग करके जाऊंगा श्री राम की शक्ति से जाऊंगा। मेरे अंदर तो कोई शक्ति नहीं है, लेकिन सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी जो श्री राम है, परमात्मा है, उसकी मैंने शरण ली, उसके साथ मेरा अनुसंधान हो गया, संबंध प्रस्थापित हो गया है। इसलिए वहां से जो शक्ति आती है प्रवाहित हो जाती है, मेरे मन तक आती है, मेरी बुद्धि तक आती है, मेरे शरीर तक पहुंच जाती है। इसलिए आश्चर्यकारक काम करने की क्षमता अपने आप आ जाती है। माता तुम चिंता मत करो, देखो हनुमान जी कहते देखो, और अपने योग बल से राम कृपा से हनुमान जी अपने शरीर को बड़ा बनाते। जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में गीता के 11वें अध्याय में आया है, भगवान ने विश्वरूप का दर्शन अर्जुन को कराया और अर्जुन डर गया विश्वरूप देख करके, उसी प्रकार माता सीता के आगे हनुमान जी ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया, उनका शीर मस्तक आसमान तक पहुंचता, तो माता सीता को थोड़ी घबराहट हो गई, भय लग गया। उन्होंने कहा अच्छा अब ये रूप को समेट लो। तो हनुमान जी ने कहा कि देख लिया हम लोग कैसे हैं, देख लिया छोटे बन गए फिर से। उनका हम बाहर से देखने में तो छोटे हैं, लेकिन सचमुच हम छोटे। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के प्रवचनों में शिकागो में एक बार कहा था, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द डिविनिटी इज हिडन फ्रॉम विद इन। प्रत्येक आत्मा मूलभूत रूप से तो अलौकिक है, सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन ये दिव्यता दबी हुई है। तो महात्मा लोग दिव्यता को बाहर निकालते, आप भी दिव्यता को बाहर निकाल सकते तो आप चिंता से परेशानियों से मुक्त हो सकते। और ये दबी हुई जो दिव्यता है उसकी वजह से हम दीन है, हीन है, लाचार है, कंगाल, उस प्रकार के हीन भावों का अनुभव करके जगत में मारे मारे फिरते। हम तो अलौकिक है, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की संतान है, उनके प्रतिनिधि है, उनके प्रतीक है। यदि हम ऐसा महसूस करें तो कोई शक्ति हमको डरा नहीं सकती, कोई शक्ति हमको भयभीत नहीं बना सकती। हनुमान जी ने कहा हमारा ये स्वरूप जो बाहर से दिखता वो हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये पंच महाभूत का चोला हमारा वस्त्र है, हमने धारण किया है, आत्मा की शक्ति अनंत है, और उससे बढ़कर है शक्ति परमात्मा की, श्री राम की, उनका वरद हस्त हमारे पर है माता, इसलिए तुम चिंता न करो। सीता ने फिर पूछा कि राम की सेना में तुम्हारे जैसे तो एक ही होंगे, नहीं दूसरों का क्या? हनुमान जी ने फिर कहा कि हमारे जैसे एक नहीं है, मेरे से बढ़कर अनेक है वहां, तो मैं तो उनमें से बहुत छोटा। देखिए कैसी नम्रता है, नम्र जो आदमी सचमुच महान बन जाता है ना, उनके अंदर अहंकार नहीं रहता। उनको आपको आपका ज्ञान बहुत है, कुछ भी नहीं, बिंदु बराबर, सिंधु में बिंदु। उनको कहो आपकी तपश्चर्या बहुत है, आप बड़े महात्मा, बोले कुछ भी ऐसी बात नहीं, आप महान है, आप महान है इसलिए मेरी महानता का दर्शन आप कर सके, नहीं तो महान तो आप है जो महानता का दर्शन करते हैं। यदि आप महान नहीं होते, अल्प होते, तो मेरी अंदर अल्पता का दर्शन करते। सबके अंदर कुछ न कुछ महत्ता तो है ही। परगुण परमाणु पर्वती कृत्य नित्यम निजरुदि विकसंत संति संत कियंत। परगुण परमाणु जैसे हो, उनको पर्वत बराबर देखने वाले संत होते हैं। सचमुच आप संत होते तो आप मेरे अंदर भी उसी को देखते, तो आपकी ये महत्ता है, मेरी तो कोई महत्ता नहीं। आदर्श संत ऐसी बात करते, और जो आदर्श नहीं होते कहते, उनको हम कहते आप बहुत बड़े, बोले आप क्या जाने, उससे भी बढ़कर मई तो आपको क्या पता चले मेरी महिमा का, मेरे गौरव का। वैसे माने अहंकार से उन्मत्त होते हैं। जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता वैसे वैसे नम्र हो जाता, वैसे वैसे सरल हो जाता, वैसे वैसे निष्कपट हो जाता, अब वैसे वैसे परमात्मा अभी के और अभिमुख बन जाता, परमात्मा का अनुसंधान साधता, वैसे वैसे शांत हो जाता। ये मन और इंद्रियों के विकार वासनाएं उनको चलायमान नहीं कर पाते, शांत बन जाता। तो हनुमान ने कहा ये प्रभु की कृपा का फल है, अब मेरे से तो बढ़कर कई वानर है, कई योद्धा लोग श्री राम की सेना में है, एक एक योद्धा रावण का नाश कर सकते, आप चिंता मत करो। मैं अभी आपको मेरी पीठ पर बैठा करके श्री राम के पास ले जा सकते, लेकिन श्री राम का आदेश नहीं। श्री राम ने मुझे इतना ही कहा था कि लंका जाकर के सीता को मिलना, समाचार लाना, बस इतना ही आदेश है। तो जो मेरे मालिक है, जो मेरे स्वामी है, जिनको मैं परमात्मा समान समझता, उनके आदेश का अनुसरण मुझे करना चाहिए, नहीं तो मैं अभी ले जाता हूं, मुझे किसी चीज का भय नहीं। तब माता सीता को विश्वास हो गया, बराबर उन्होंने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को, आपको सफलता मिलेगी, आप अमर जीवन प्राप्त करोगी, शांति मिलेगी, मुझे बहुत आनंद हुआ है, बहुत संतोष हुआ है, बड़ी तसल्ली हुई है आपको देख करके। हनुमान जी फिर माता सीता के श्री चरणों में प्रणाम करके चले गए। तो ये भगवान के साथ यदि हमारा संबंध होता है, हम तो छोटे हैं ऊपर से, बहुत छोटे, शरीर तो छोटा ही, विकारशील है, वृद्धावस्था का ग्रास बनेगा, व्याधि का शिकार बनेगा, मन की शक्ति भी सीमित है, मन की शक्ति बहुत सीमित। यदि आज आपने कैलेंडर में देखा होगा, अमेरिका का कैलेंडर है, देखा होगा तो उसमें लिखा है आज रविवार स्नो एंड रेन, बाहर आपको रेन दिखता है नहीं दिखता, और परसों लिखा था सनी, सूर्य होगा, किरणें निकलेगी, बिल्कुल नहीं निकला धूप, आज निकला, देखिए आज निकली धूप और रेन नहीं है, स्नो नहीं है। तो मनुष्य की शक्ति कितनी अल्प है, यदि वो अहंकार करता है कि मैं बहुत कर सकता, जान सकता पहले से, बेकार है, नहीं जान सकता, वो तो बिल्कुल सामान्य है, परमात्मा के आगे कुछ भी नहीं है। वो गैस कर सकता, गैस फोरकास्ट, लेकिन छाती ठोक करके नहीं कह सकता कैसा ही होगा, एकाध योगी कह सकता, एकाध परमात्मा का कृपा पात्र भक्त कह सकता, ऑर्डिनरी मैन चाहे लर्नेड हो नहीं कह सकता, बड़ा मुश्किल था। इसलिए आदमी का गमन काम में नहीं आता, वो भगवान की शरण में चला जाए, भगवान की शरण में चला जाकर के वो कहता है प्रभु आप ही सब कुछ हो, मैं आपकी शरण में, आप मेरे पर कृपा करिए, आपके वरद हस्त को अभय हस्त को मेरे सिर पर रखिए, जिससे मैं सर्व प्रकार के तापों से मुक्त हो जाऊं, सर्व प्रकार की अशांति का शमन मेरे जीवन के अंदर हो जाए। तो वो तो छोटे, हम लोग छोटे हैं, लेकिन हमारे पीछे जो शक्ति है वो छोटी नहीं। हमें नाना हमारी ना शक्ति नानी, हमें नाना हमारी ना शक्ति नानी, गुजराती पद में लिखा गया है कि हम लोग छोटे हैं लेकिन हमारी शक्ति छोटी नहीं। हमें नाना हमारी ना शक्ति नानी, ना शक्ति नानी ना भक्ति नानी, हमें नाना हमारी ना शक्ति नानी, हमारी शक्ति भी छोटी नहीं है और हमारी भक्ति भी छोटी नहीं। हमें नाना हमारी ना शक्ति, हवे वात तो रही ये न थी छानी, अब वो बात अप्रगट नहीं है, गुप्त नहीं है, कौन सी? हमें नाना हमारी ना अनुरक्ति नानी, हमें नाना हमारी ना शक्ति, हमारी जो अनुरक्ति है आपके प्रति हे प्रभु वो छोटी नहीं है, हम चाहे छोटे हो आप बड़े हो नहीं, हमारे साथ आपका संबंध हो गया फिर क्या। जब प्रेसिडेंट कहीं जाता है तो चपड़ासी अपने आप साथ चले, प्रेसिडेंट को इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना कार्यक्रम बनाता, लेकिन चपड़ासी लोग स्पेशल परमिशन नहीं लेते, वो तो प्रेसिडेंट के साथ अपने आप चले। इसी प्रकार जब भगवान के साथ किसी जीव का संबंध हो जाता है तो फिर वो कहीं पर भी चला जाता है, उसको स्पेशल परमिट की कोई आवश्यकता नहीं, उसके लिए सब रास्ते खुले हो जाते, सब जगह सरलता, सब जगह सफलता, सार्वत्रिक सफलता हो जाती। अब श्रीमद् भगवद गीता में ये बताया गया है कि भगवान की शरण किसने ली और कौन तर गया, गीता के प्रथम अध्याय में आप देखेंगे कि भगवान की शरण अर्जुन ने ली, देखिए इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र अर्जुन के रथ के सारथी बनकर के कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में, गीता ने प्रिसेप्ट बताया, आदर्श सिद्धांत मंत्र, फिर वो फॉलो किसने किया वो भी बताया, इलस्ट्रेशन भी बताया, मेरे में चित्त लगाओगे तो तरोगे गीता ने कहा, तो जिसने चित्त लगाया और तर गया समस्त कष्टों को वो अर्जुन को भी रखा है, और मेरे में चित्त नहीं रखोगे अहंकारी बनोगे तो विनष्ट हो जाओगे, विनाश हो जाएगा तुम्हारा, वो भी बताया गीता ने दुर्योधन, एक बाजू अर्जुन है, एक बाजू दुर्योधन है। गीता कहती है आप क्या बनना चाहते हैं? आप अर्जुन बनना चाहते? अर्जुन का अर्थ है रुजु ताथे संपन्न, संस्कृत में रिजु शब्द है, उसका अर्थ होता है नम्र, सरल, निष्कपट। तो जो रिजुता से संपन्न निष्कपट है वही अर्जुन। जीव जब नम्रता से संपन्न होता तभी किसी की शरण ले सकता, अहंकारी होगा तो शरण नहीं ले सकता। अर्जुन नम्र था, भगवान की शरण ली, भगवान के प्रति प्रेम था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनके जी रथ के सारथी रहे। लेकिन दुर्योधन ने शरण नहीं ली। देखिए दुर्योधन को स्वयं समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र पांडवों के विष्टिकार बन करके गए थे, द्वारिका गए थे, अर्जुन भी गया। और भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन समझ जा, राज्य तेरा तो नहीं है, पांडु का था। पांडु गया था तप करने वन में, अपने भाई धृतराष्ट्र को राज सौंप करके गया था। पांडु के लड़के हुए पांच वन में अब आए हैं, उनको थोड़ा सा राज तो देना ही चाहिए। तुम हत्या करके बैठ गए हो, ठीक तो बात नहीं है। अच्छा तुम आधा राज नहीं दे सकते तो पांच गांव दे दो पांडव। पांडव लोग पांच गांव पर अपना गुजारा करेंगे, क्षत्रिय है, भिक तो नहीं मांगेंगे वे लोग, क्षत्रिय है, स्वमान, पांच गांव दे दो। दुर्योधन ने अहंकार से उन्मत्त होकर के कहा, पांच गांव की आप बात कर रहे, मैं एक गांव भी नहीं दे सकता। इतना ही नहीं, सुई को नीचे जमीन पर डालने से उसके अग्रभाग से जितनी जमीन रोकी जा सकती है उतनी जमीन भी मैं पांडवों को देने को तैयार नहीं हूं। और फिर भी उनको यदि मोह है राज्य का तो आजा युद्ध के मैदान। वीर भोग्या वसुंधरा, जिसके बाहु में बल होगा, जो विजयी बनेगा युद्ध में वो राज्य का उपभोग करेगा। घमंड था दुर्योधन। भगवान ने कहा, दुर्योधन युद्ध से किसी का कल्याण नहीं होता, सभ्यताओं का नाश हो जाता है, हजारों बच्चे पिता विहीन बन जाते, तेरा भी कल्याण नहीं होगा, नाश हो जाएगा, समस्त कौरव कुल का निकंदन हो जाएगा, पांडवों का भी नाश होगा। इसलिए चेत समझ, अभी तेरे हाथ में बाजी है, मैं समझाने को आया हूं। हाँ, दुर्योधन ने हंस करके कहा, तुम कौन होते हो मेरे समझाने वाले? मैं तुम्हें समझा सकता हूं, तुम नहीं समझ पाते। तुम पांडवों का पक्ष लेकर के आए हो, विष्टिकार बन गए, मैं क्या मूर्ख हूं कि तुम्हारे चक्कर में पड़ जाऊंगा? देखिए शास्त्र कहते हैं कि जिनका सर्वनाश होने वाला होता है पहले उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है, पहले बुद्धि बिगड़ती है फिर उसका नाश होने लगता है, और जिनकी उन्नति होने वाली होती है पहले उनकी बुद्धि सुधरने लगती है। उनको दान अच्छा लगता, तप अच्छा लगता, धर्म अच्छा लगता, सत्संग अच्छा लगता, संत समागम अच्छा लगता, ये अच्छा लगता। और जिनकी बुद्धि बिगड़ जाती है, जिनका जीवन विनाश की ओर जाने वाला, उनको जुआ अच्छा लगता, व्यभिचार अच्छा लगता, शराब अच्छा लगता, दारू अच्छा लगता, ये अच्छा लगता, झूठ बोलना अच्छा लगता, धूम्रपान करना अच्छा लगता, छल कपट अच्छा लगता, उनका फिर नाश हो जाता धीरे धीरे, जीवन का अंत आ जाता है, उसके पहले अशांति से वो आदमी संपन्न हो जाता। तो सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि दोनों के पर हमारे जीवन का बहुत बड़ा था। तो दुर्योधन का सर्वनाश होने वाला था, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो इसलिए दुर्योधन की बुद्धि बिगड़ गई। नित्य अनित्य समझता था, अनित्य को नित्य मानता, शुभ को अशुभ समझता था, अशुभ को शुभ समझता। बुद्धि बिगड़ जाती है तब ऐसा ही होता है। किसी आदमी को मैंने कहा, देखो तो मेरे कपड़े कैसे सफेद है, उन्होंने हंस करके, योगेश्वर जी क्या झूठ बोल रहे, महात्मा बन करके झूठ बोलते क्या? मैंने सुना आप महात्मा है, हिमालय में 1940 से रहते हैं, कितने बरस हो गए हिमालय में आपको रहते रहते, तो नाम सुन करके मैं दर्शन करने के लिए आया था कि अच्छे महात्मा है, चलो दर्शन का लाभ मिलेगा, और आप पहली मुलाकात में झूठ बोल रहे। मैंने कहा, भाई झूठ नहीं बोलता, दो आदमी से पूछ लो या बैठे, मेरे कपड़े सफेद है। उन्होंने कहा, बिल्कुल बेकार बात है, मैं इतना मूर्ख थोड़ा, उल्लू थोड़ा कि आपकी बात को मान लूं, आपने पीले कपड़े पहने और सफेद सफेद कर रहे। देखो दूसरे लोग जो बाजू में बैठे थे वो कहने लगे, भाई सफेद पहने, योगेश्वर जी झूठ नहीं बोल रहे, आप ही ऐसा बोल रहे। बोले, नहीं पीले पहने, आप सबने पीले पहने हैं, योगेश्वर जी ने भी पीले पहने हैं, क्योंकि उनकी आंख में कमला था, पीलिया आंख में था, इसलिए पीला ही पीला दिखाई। जिनकी आंख में पीलिया दुर्बुद्धि का हो जाता है
उसको सत्य पदार्थ दिखता है, वो पदार्थ को वास्तविक स्वरूप में रियलिटी उनको दिखती नहीं, उसको को ये सत्य है तो बोलेगा असत्य और सत्य बोल रहे। देखिए दुर्योधन की ऐसी दशा, भगवान की बात उन्होंने नहीं मानी, भगवान ने बार बार समझाया दुर्योधन को, युद्ध टालने के लिए भरसक कोशिशें भगवान श्री कृष्ण ने की युद्ध के आरंभ के पहले, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। तब भगवान ने कहा दुर्योधन कोई विकल्प नहीं, नाश हो जाएगा तो कहा। बार आए पांडवों ने पूछा क्या हुआ, बोले क्या होगा, युद्ध अवश्यम भावी, अनिवार्य है आपको लड़ना पड़ेगा, यदि राज्य प्राप्त करना है तो कर्तव्य समझ करके युद्ध करो, दूसरा कोई इलाज ही नहीं है आपके लिए। तब महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रेम को प्राधान्य प्रदान करके लक्ष्य में लेकर के अर्जुन के रथ के सारथी बनना स्वीकार कर लिया था। भगवान ने अर्जुन का पक्ष, युद्ध नहीं करना, युद्ध में शस्त्र नहीं उठाना, ये भगवान का नियम था, लेकिन अर्जुन ने कहा कि कोई बात नहीं, आप रहो, उपस्थिति आपकी हमारे पास हो, आपको देखने से हमें प्रेरणा मिलेगी, चाहे आप युद्ध शस्त्र धारण करेंगे नहीं धारण करेंगे, आपका दर्शन तो होगा, आप मार्गदर्शन तो प्रदान करेंगे, आप सलाह तो हमें प्रदान करेंगे, इतना ही हमारे लिए तो पर्याप्त, आप हमारे जी आओ सारथी बनो हमारे रथ के। तो भगवान अर्जुन के रथ के सारथी तो बने, परंतु अर्जुन के जीवन रथ के भी सारथी बने। देखिए गीता कहती है कि आप भी कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में हो, ये महाभारत मैदान है, दी लाइफ, जीवन आपका, इसमें कौरव है पांडव है, सारे विचार खराब विचार, अच्छे विकार खराब विकार, ये सब दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति गीता के 16वें अध्याय में वर्णन किया गया है, ये दोनों मोर्चा मांड करके बैठे आपके जीवन में, यदि आप सफल बनना चाहते हैं जीवन के जंग में तो भगवान श्री कृष्ण को, भगवान को आपके जीवन रथ के सारथी के रूप में पसंद करो। आप सारथी के रूप में किसको पसंद करते उसके पर बहुत बड़ा आधार, आपका ड्राइवर कैसा है उसके पर बहुत बड़ा आधार कि आपकी मोटर फंस जाएगी कि नहीं फंसेगी, आप एक्सीडेंट करेंगे नहीं करेंगे। हम लोग ऐसे एक ड्राइवर को लेकर के उत्तर भारत की यात्रा को पिछले जाड़ों में गए कि जो ड्राइवर नियम पालन ही नहीं करता था, हमको पता नहीं कि ये नियम पालन नहीं करता, किसी ने सिफारिश की हम लेके गए, रास्ते में मालूम पड़ा कि ये ड्राइवर ड्राइविंग का साधारण नियम है उसका भी पालन नहीं करता, कीप टू द लेफ्ट, ये साधारण नियम है ड्राइविंग का कि भाई जब आप चलते हो तो भाई ने बाएं चलो, साधारण नियम, उन्होंने समझा मैं अमेरिका में रहता हूं इसलिए कीप टू द राइट, राइट की ओर ही चल रहे मोटर, कितनी बार एक्सीडेंट कर बैठा, कितनी बार एक्सीडेंट से बांध ऐसे ही बच गया बेचारा। मैंने कहा चलाओ ऐसे, बोले नहीं मैं तो ठीक ही चला रहा, यार ठीक चला रहे कीप टू द लेफ्ट पालन करो, आप इंडिया में हो अमेरिका में नहीं हो, ड्राइवर के पर बहुत बड़ा आधार है, नाविक के पर बहुत बड़ा आधार है, आप स्टीमर में बैठे स्टीम लॉन्च में नाविक जो होगा नेविगेटर उसके पर बहुत बड़ा आधार, आपकी नाव डूब भी सकती है परमेश्वर। देखिए अब भगवान श्री कृष्ण नाविक मिले, ड्राइवर सारथी, तर गए भीष्म द्रोण तथा जयद्रथ जला गांधार नीलो पला शल्य ग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेला कुला अश्वत्थाम विकर्ण द्रोण, सारा वर्णन किया है, नदी रण नदी, रण नदी को तर गए पांडव, तर गए क्यों, तो उन्होंने लिखा कैवर्त कह केशव, क्योंकि नेविगेटर जो थे ने नाविक चलाने वाले वो केशव भगवान थे, इसलिए तर गए। दुर्योधन के पास भगवान नहीं थे, अर्जुन और पांडवों के पास थे, तो हम भी इस जीवन को तर सकते, हम भी इस जीवन में शांति पा सकते, लेकिन शर्त ये है सबसे पहली गीता के अनुसार कि हम नेविगेटर नाविक कैवर्त कह ड्राइवर हमारे जीवन के सारथी भगवान को पसंद, भगवान में विश्वास रखे, भगवान का स्मरण करे, अर्जुन की तरह भगवान से कहे प्रभु शादी माम त्वाम प्रपन्नम, हम लोग कुछ निर्णय नहीं कर सकते, हमारे जीवन की बागडोर को आप संभाल, हमको प्रकाश पहुंचाई, हमारे पर कृपा का अभिवर्षण करिए, तो प्रार्थना करना चाहिए, तो फिर जीवन में हम भी निर्भय बन सकते, निश्चिंत हो सकते, अर्जुन की तरह वो पार कर सकते, एकदम तर जाएंगे, और महाभारत मैदान है जीवन का जटिल जंग, उसमें विजयी बन जाएंगे, चाहे जितने विक्षेप आवे, चाहे जितने, भगवान कहते हैं सर्व दुर्गाणी मच्चित सर्व दुर्गाणी, सर्व प्रकार की कठिनाइयां उनको तुम पार कर सको यदि चित्त को मेरे में जोड़ोगे, यदि जीवन का संबंध मेरे से बनाओगे तो फिर तुम्हें कोई भय नहीं। गीता को कहे हुए हजारों बरस हो गए, 5000 बरस से अधिक, आज भी गीता पुरातन नहीं हुई, क्योंकि उनके अंदर जो संदेश है वो अनंत काल के लिए है। वो भारत में ही नहीं, अमेरिका में भी लागू पड़ते, जहां जहां मनुष्य है वहां वहां गीता लागू पड़ती है। इसीलिए गीता आज भी जीवित दिखती, यदि हम उनको ठीक ढंग से देखते, मॉडर्न सीक्वेंस में, आधुनिक संदर्भ में यदि हम गीता के उपदेशों का विचार करते हैं, तो हमको ऐसे लगता है कि गीता तो हमारे सबके लिए, केवल अर्जुन के लिए नहीं थी। जो जो अर्जुन है, जो जो प्रकाश का अभिलाषी है, मानव सबके लिए गीता है। और आज भी हम उसमें से शांति पा सकते हैं, आज भी हम सुखी बन सकते। अर्जुन को, दुर्योधन को अहंकार था, उनका नाश हुआ। भगवान कहते अथ चे त्वम अहंकारान न श्रोष्यसि विनंशसि, यदि तुम अहंकार से उन्मत्त होकर के नहीं सुनते हो, विनाश हो जाएगा तुम्हारा। तो मनुष्य को कहां जाना है, सोचना चाहिए। अहंकार का रास्ता है, दूसरों के धन को हथियाने का रास्ता है, पसीने का नहीं खाने का रास्ता है, छल कपट करने का रास्ता है। वहां जाए दुर्योधन की तरह तो कोई इनकार थोड़ा कर सकता, लेकिन वो बर्बादी का रास्ता है, अशांति का रास्ता है। थोड़ा सा समय था उसका सदुपयोग करने के लिए मैंने थोड़ी गति को बढ़ाई मेरे वक्तव्य की, जिससे थोड़े समय में मैं मेरी बात को आपके सामने रख सकूं। ये नहीं देखा कि ऑडियंस कितना है, ये नहीं देखा, मैं कभी नहीं देखता, हजारों आदमी होते हैं वहां पर भी ये नहीं देखता कि बहुत लोग हैं, थोड़े होते हैं, ये नहीं देखता थोड़े। मेरी बात भगवान को सुनाना है, मेरी बात भगवान के आगे रखना है, मैं भगवान की अंजलि, भगवान का कीर्तन ही करता वाणी से। ऐसा वाणी मई पूजा, ये मेरी वाणी मई पूजा है भारतीय संस्कृति की। इसलिए मैं ये नहीं देखता कि कौन है, सुनने वाले कितने हैं कितने नहीं, मैं उतने ही आनंद से उतने ही तेजी से बोलता हूं जितना 10,000 आदमियों के आगे भारत में बोलता हूं, गुजरात में बोलता हूं, उतनी तेजी से 10 आदमियों के आगे भी परदेश में बोलता, क्योंकि मुझे तो भारतीय संस्कृति का जयगान गाना है, भारतीय शास्त्रों का जयगान गाना, और हजारों मनुष्यों को जिसकी आवश्यकता है, 5 आदमी को भी उसी संदेश की आवश्यकता है, तो उसको भी सुना है। इसलिए हम लोग गीता का जो मंत्र मैं कहता हूं, उस मंत्रों में से एक मंत्र के पर विचारों का प्रदर्शन मैंने मेरी अल्पमति के अनुसार किया। और हम लोग यहाँ के स्थानाध्यक्ष है स्वामी, पूज्य स्वामी जगदीश्वरानंद जी महाराज, उनका, उनके आभारी है कि उन्होंने हमको बड़े प्रेम से, बड़ी सरलता से, एक बार हम लोग यहाँ दर्शन करने आए भी थे कुछ दिन पहले, बड़े प्रेम से हमारी बात सुनी, यहाँ आने के लिए हमें आमंत्रित किए, ऐसे सुंदर स्थान में हम लोग बैठ सके, क्योंकि मुझे स्वामी विद्यानंद जी से पहले का प्रेम है। आप लोगों ने तो स्वामी विद्यानंद जी यहाँ के स्थापक शायद दर्शन भी नहीं किया होगा, उस जमाने में 1940-41 में मैंने स्वामी विद्यानंद जी, गीता मंदिरों के जो प्रायोजक है भारत में, अहमदाबाद में, नडियाद में, काशी में, नागपुर में, उनका दर्शन किया, कई बार दर्शन किया, और उनकी बातों को सुनी, प्रवचनों को सुनी, बड़े अच्छे वक्ता और बड़े सुंदर संत थे। तो इसलिए मेरे मन में एक भावना थी कि न्यूयॉर्क में उनका भी स्थान है, मंदिर है, चलो दर्शन करें। और उस परम पूज्य स्वामी जगदीश्वरानंद जी का दर्शन करके हमको इतना ही संतोष हुआ जैसे हम स्वामी विद्यानंद जी का दर्शन करते हैं। इतने नम्र, सरल, निष्कपट, प्रेममयी मूर्ति है स्वामी जगदीश्वरानंद की। तो ये कार्यक्रम उनके आभारी है। अब हमारे पास 5 मिनट है, माँ सर्वेश्वरी एक भजन सुनाएगी, फिर हमारा कार्यक्रम पूर्ण करेंगे, क्योंकि 3 बजे यहाँ आरती होती है, ऐसा हमने सुना है। माँ सर्वेश्वरी त्यागी है, उन्होंने त्याग किया है संसार का, पहले प्रिंसिपल थी सूरत में, BA BEd है, और भजन अपने आप लिखती भी है, उनके भजनों के ग्रंथ प्रकाशित भी हुए, गुजरात की देन है ये, जैसे कई संत गुजरात में से निकले हैं आज भी है, माँ सर्वेश्वरी भी उसमें है, और 2.5 साल से सब कुछ छोड़ा हुआ है। एक भजन उनके मुख से हम सुने।
भज मन गिरिधर लाल नटवर गोपाला,
भज मन गिरिधर लाल नटवर गोपाला,
गोपाला नंदलाला
मन गिरिधर लाल नटवर गोपाला।
मीरा बाई सदन कसाई,
मीरा बाई सदन कसाई,
हरि भजन से मुक्ति पाई,
हरि भजन से मुक्ति पाई,
प्रभु भजन से मुक्ति पाई,
प्रभु भजन से मुक्ति पाई।
भज मन श्री नंदलाल नटवर गोपाला,
भज मन श्री नंदलाल नटवर गोपाला।
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमी, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति, ॐ शान्ति।